विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्वाड का मंच सहयोग और साझेदारी का आज के समय का सबसे बड़ा उदाहरण है। टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डॉ जयशंकर ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि क्वाड विदेश नीतियों का बहुत ही गहराई से चिंतन कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक क्वाड को नई दिशा देने में बड़ी मददगार होगी। डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड विश्वसनीय दूरसंचार और समुद्री केबल कनेक्टिविटी से लेकर मानवीय सहायता और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में काम कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व में स्थिरता, सुरक्षा, प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से आज का समय चुनौतियों से भरा है और इसलिए विश्वसनीय साझेदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भी जरूरी हो गया है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की आज टोक्यो में बैठक हुई जिसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के अलावा जापान, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। संसद के दोनों सदनों में दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में यूपीएससी छात्रों की मृत्यु का मामला उठाया गया। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस घटना की जांच की मांग की। शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्य बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि यह दिल्ली सरकार की लापरवाही का परिणाम है। कांग्रेस के शशि तरूर ने कहा कि ऐसी घटना में कितना भी मुआवजा दिया जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि भवन नियमों समेत अनेक नियमों का उल्लंघन किया गया। श्री तरूर ने मामले की विस्तृत जांच की मांग की। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कोचिंग सेंटर चलाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राज्यसभा में भी इसी घटना पर चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने इस घटना को आपराधिक लापरवाही बताते हुए मामले की विस्तृत जांच करने और इसके लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भवन के नियमों के उल्लंघन को लेकर चिंता जताये जाने के बावजूद निकासी प्रणाली को स्वच्छ और सुचारू बनाने का कोई कदम नहीं उठाया गया। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की। डीएमके के तिरुचि शिवा ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर नियम 176 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा की अनुमति दी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कोचिंग हादसे मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें इमारत के बेसमेंट के मालिक और गेट को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति भी शामिल है। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में आज राउस रेवेन्यू अदालत में आरोप पत्र दायर किया। श्री केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। वे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज संबंधित धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में थे। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में नौकरियों और दाखिलों में 65% जाति आधारित आरक्षण को रद्द करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने बिहार सरकार की ओर से दायर अपीलों पर नोटिस भी जारी किया जिन पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी। पिछले महीने पटना उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिलों में आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट के कांस्य पदक फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कल उनका सामना दक्षिण कोरिया के ओह ये जिन और ली वोनहो से होगा। ओह ये जिन ने व्यक्तिगत प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता था जिसमें भाकर ने कांस्य पदक जीता था। इस स्पर्धा में अर्जुन चीमा और रिदम सांगमान की भारतीय जोड़ी 10वें स्थान पर रही। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में रमिता जिंदल 7वें स्थान पर रही। आज हॉकी के पूल बी मैच में भारत का सामना अर्जेंटीना से है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार भारत में बाघों की आबादी वर्तमान में स्थिर है और बढ़ रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।